ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ग्लोबल समिट 2025 के इस प्लेनरी सेशन वन में आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करते हुए इस प्लेनरी सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस सत्र के महानुभाव अनुभवी वक्ताओं से अनुरोध रहेगा कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी संतोष दीदी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी, आप हमारे बीच उपस्थित है। कर्तव्य ध्वनि से हम सभी मिल करके आज के स्पीकर्स का अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करते रहेंगे। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुषमा दीदी, जो जयपुर के ब्रह्म कुमारी सेंटर्स की डायरेक्टर है, आपसे भी नम्र अनुरोध है कि मंचासीन हो। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी, इंचार्ज ऑफ ब्रह्म कुमारी इंदौर जोन एमपी एंड छत्तीसगढ़, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के सत्र के चीफ गेस्ट श्री दुर्गादास उके जी, हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपसे भी नम्र अनुरोध है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मिस्टर अक्षय माथुर जी, हेड ऑफ अदानी ग्रुप ऑफ ग्रुप चाइना ऑपरेशन शंघाई, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कैलाश विजय वर्गिया जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। आज गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी से सम्मानित हो रहे हैं डॉक्टर वल्लभ भाई कतिरिया जी, चेयरमैन ऑफ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गुजरात, आपसे भी अनुरोध है मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ज्वेल ऑफ भारत से सम्मानित हो रहे हैं आज आदरणीय पद्मश्री डीआर कार्तिकेयन जी, हम्बल रिक्वेस्ट टू कम अप ऑन द डायस एंड प्लीज बी सीटेड, इज अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स, आपसे भी नम्र अनुरोध है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अपलया नायडू कालीसेट्टी जी, ऑनरेबल एमपी लोकसभा विजयनगरम, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर ब्रह्म कुमार बनारसी भाई जी, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल विंग आरएआरएफ, आपसे भी नम्र अनुरोध है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के इस सत्र में बहुत सुंदर टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रिवेंटिंग वॉर थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। अलोंग विद दिस ब्यूटीफुल टॉपिक, देयर इज वन मोर ब्यूटीफुल टॉपिक व्हिच इज मीडिया एज अ कैटलिस्ट फॉर पीस एंड हार्मनी। विश्व में शांति सब चाहते हैं, लेकिन पीस एंड हार्मनी स्थापन करने के लिए हमें क्या करना है, इंडिविजुअल योगदान क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज मंचासीन है अपने ही क्षेत्र के विद्वान और महान आत्माएं हमारे बीच में उपस्थित है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हम उस परमपिता परमात्मा के स्मृति में बैठते हैं, ताकि फिर उनकी शक्ति से उनके ज्ञान से, उनके सपोर्ट से हम बहुत कुछ इस समाज के लिए कर सके, अपने आप को परिवर्तन कर सके। चलिए चंद क्षणों के लिए परमपिता परमात्मा की दिव्य स्मृति में बैठते हैं। आओ सभी मिलकर के नर और नारी ऐसा सुखमय संसार बनाएंगे। ऐसा सुखमय संसार बनाने के लिए हर व्यक्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये कहानी आप सभी ने सुना है, तालाब में कहा गया था कि एक ग्लास दूध डाला जाए, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचे कि दूसरा व्यक्ति दूध डालेगा तो मैं एक ग्लास पानी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हर एक ऐसा करेंगे तो वो तालाब दूध से नहीं पानी से भर जाएगा। तो हर व्यक्ति बूंद बूंद से सागर बनता है। तो इस पर्सनल हम क्या योगदान कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले मंचासीन सभी महानुभावों का स्वागत बुकेस और बैडजेस के द्वारा करने के लिए ब्रह्म कुमारी बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ। आदरणीय संतोष दीदी हु इज जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी, बचपन से ही इस संस्था के साथ जुड़ करके अविरत प्रयास में लगे हुए हैं समाज की सेवा में। आदरणीय सुषमा दीदी, आप भी बचपन से ही इस संस्था के साथ जुड़ करके त्याग तपस्या और सेवा के द्वारा इस समाज को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। आदरणीय हेमलता दीदी, जो इंदौर जोन के आप इंचार्ज हैं, आप भी युवा काल से ही इस संस्था के साथ जुड़ करके अनेक अनेक आत्माओं को इस आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा दी हुई है। आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर डी आर कार्तिकेयन जी, जो इस संस्था के साथ बहुत साल से जुड़ करके आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, आदरणीय गुलजार दादी जी, सभी दादियों के पालना में पलते हुए आध्यात्मिकता के इस यात्रा में हमारे साथ साथ है। आदरणीय बनारसी भाई भी इस मेडिकल विंग के सेवा में अविरत रूप से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हम सभी का आज भाग्य है ऐसे महानुभाव, ऐसे ज्ञानी आत्माओं का सुनने के लिए आज इतना अवसर हम सभी को मिला हुआ है। सबसे पहले मैं निवेदन करने जा रही हूँ राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी जी से, आप शब्दों के द्वारा सभी का स्वागत करें, मंचासीन सभी महानुभावों का और सभा में उपस्थित सभी अपने भाई बहनों का स्वागत शब्दों के द्वारा करने के लिए आ रहे हैं राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी जी।
ओम शांति। आज हम सभी इस वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 के ऐतिहासिक प्लेनरी सेशन में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसका विषय है शांति और सद्भाव के उत्प्रेरक के रूप में मीडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारस्परिक विश्वास से युद्ध को रोकना। इस सेशन में पधारे हमारे सम्माननीय अतिथिगण, सांसदगण, मंत्रीगण, संपादकगण तथा अन्य सभी पधारे हमारे मेहमानों का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा तथा साथ ही उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तथा हमारे पूर्वज प्रेरणा स्रोत दादियां एवं वरिष्ठ भाइयों का भी मैं सूक्ष्म में यहाँ आवाहन कर उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को यहाँ महसूस करते हुए उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि के रूप में पधारे श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय सशक्त मंत्री, माननीय मंत्री शहरी विकास और आवास संसदीय कार्य मध्य प्रदेश सरकार, श्री जब्बार सिंह खर्रा, सर्वप्रिय लोक कल्याणकारी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शहरी विकास और स्वास्थ्य शासन राजस्थान सरकार, इनका सभी का मैं बहुत ही दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही सम्माननीय श्री दुर्गादास उइके जी, सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाले माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य भारत सरकार के, इनका भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अप्पला नायडू कालीसेती, माननीय सांसद लोकसभा विजयनगरम, आपका भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। माननीय श्री यतीश महर्षि, सीओ एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड रेडियो मिर्ची, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माननीय श्री अक्षय माथुर, अडानी ग्रुप चीन संचालन प्रमुख शंघाई, आपका भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही श्री सम्माननीय श्री ओम गौर, राष्ट्रीय संपादक दैनिक भास्कर ग्रुप भोपाल, आपका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय डॉक्टर वल्लभ भाई कठीरिया, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गुजरात, आपका भी दिल से स्वागत अभिनंदन है। हमारी संस्था की अतिरिक्त प्रमुख राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी, आपका भी हृदय से स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। ब्रह्मा कुमारी जयपुर की निदेशक राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी का भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही आज के कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमार डॉक्टर बनारसी भाई, सचिव मेडिकल विंग राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, आपका भी दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी स्नेही सुमन बहन का भी, जो कि वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है, आपका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय हम देख रहे हैं बहुत ही सामयिक है, न सिर्फ सामयिक परंतु मानव चेतना को जागृत करने वाला है। इस परिवर्तनशील दुनिया में, जहां हम विश्व में चारों ओर युद्ध, भय, अशांति, अविश्वास, असुरक्षा, असहयोग, यही वातावरण देख रहे हैं, ऐसे समय में मीडिया के माध्यम से सारे विश्व में शांति, सद्भाव, सहयोग का प्रसार करना, ये बहुत ही आशा की किरण जैसा समाचार है, और इसके द्वारा जरूर समाज में एक आशा की किरण जागृत होगी। हम सभी जानते हैं मीडिया आज केवल सूचना देने का साधन नहीं है बल्कि दिशा देने वाली शक्ति बन गया है। आज के समय में यदि एक सकारात्मक समाचार, एक सत्य आधारित चित्र, एक संवेदनशील कहानी किसी के भी एक के तो क्या लाखों के दिलों को छू सकती है और समाज में समाज के सोचने के ढंग को भी परिवर्तन कर सकती है। आपने अभी अभी हमारी सम्माननीय शिवानी बहन जी से सुना, ब्रह्मा कुमारी की मान्यता है कि शांति कहीं बाहर की व्यवस्था नहीं है लेकिन ये आत्मा का अपना वास्तविक मूल स्वभाव है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, आत्मा के परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो शांति के सागर हैं, उनको जान लेते हैं और एक दूसरे को जान करके सबके प्रति एक आत्मिक भाव, भाई भाई की भावना जब आ जाती है और उसी भाव से जब हम एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं तो यहीं से शुरू होता है सच्चा सद्भाव, सच्चा सम्मान, सच्चा सहयोग, सच्ची शांति, सच्चा विश्वास। तो ये विषय बहुत ही गहरा है और आज हमारे पास मंचा सिंह बहुत ही सुंदर अनुभवी वक्ता उपस्थित है। हम इन वक्ताओं से आज के विषय की महीनता को, गहराई को बहुत अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे। इसी शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः आप सभी का, मंचा सिंह अतिथियों का, सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, सम्मान है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता दीदी का और आपका भी तहे दिल से हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभी मैं ब्रह्म कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, अभी अभी पहुंचे हुए श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आपका स्वागत बुकेज और बैजेस के द्वारा करेंगे। साथ साथ श्री दुर्गादास उके जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। स्वागत
आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अतिथि पद्मश्री डी आर कार्तिकेन जी, फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति।
श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का सम्मान हो रहा है, हम सभी करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन अभिवादन करते हैं। अभी स्वागत और सम्मान श्री दुर्गादास यूके जी का हो रहा है। सम्मान के उपरांत मैं अभी नम्र अनुरोध कर रही हूँ श्री कैलाश विजयवर्गीया जी से, जो हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गेस्ट ऑफ ऑनर एड्रेस दें। आपसे नम्र अनुरोध है श्री कैलाश विजयवर्गीया जी।
ओम शांति। बोले भारत माता की। बहुत बड़ा हाल है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं यहां, पर आवाज उतनी ताकतवर नहीं है। बोले भारत माता की। धन्यवाद। इस पवित्र स्थान पर यहां उपस्थित मेरे मित्र, आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय दुर्गादास उइके जी, जरा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। यहां काफी अच्छे गेस्ट हैं, श्री एप्पल नायडू जी हैं, वाह, तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करें। लोकसभा के सदस्य हैं आप, आदरणीय बीके संतोष दीदी, सुषमा दीदी, जरा तालियां बजाते जाइए। पद्मश्री कार्तिकेयन जी, मेरे मित्र वल्लभ भाई, जरा जोरदार ताली बजना चाहिए, गुजरात के हैं ये। यहां उपस्थित सभी डायस पर जिनके नाम मेरे पास नहीं है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, और देश भर और विदेश से भी आए इस पवित्र स्थल पर सभी डिवोटीज, सभी इस संस्थान के प्रति श्रद्धा रखने वाले मित्रों और देवियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार। देखिए, युद्ध का नाम आते ही सिरहंसी उठती है। युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, पर इस पुण्य भूमि में हम बैठे हैं। हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है रामचरितमानस में भगवान राम और रावण का युद्ध। हमने देखा है किस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ। मुझे भगवान कृष्ण की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने कहा था कि दुर्योधन, युद्ध से किसी का लाभ नहीं, पता नहीं कितनी माताएं बहनें विधवा हो जाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और विजय किसकी होगी अभी कुछ नहीं पता, पर मिलेगा किसी को कुछ नहीं, सबको खोना पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन को कहा था कि सिर्फ 5 गांव दे दो तो शायद हो सकता है कि ये युद्ध नहीं हो, महाभारत नहीं हो, पर दुर्योधन ने मना कर दिया। क्या कारण था उसका? उसका कारण था अति अहंकार, अति महत्वाकांक्षा। युद्ध के कारण में बहुत बड़े कारण नहीं है, कहीं सीमा विवाद है, कहीं पर नस्लीय श्रेष्ठता के लिए युद्ध हो जाता है, और कई बार आर्थिक लाभ के लिए भी युद्ध होता है। पर हम सुबह इसके पहले सत्र में शिवानी दीदी को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि यदि हम एक बार तय कर ले कि जितनी भी आत्माएं हमारी, ये सब हमारे भाई हैं और हमारा पिता एक ही है, हम आपस में भाई भाई हैं, शायद ये संदेश दुनिया तक पहुंच जाए तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाए, युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, लगभग 1325 दिन हो गए। फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष लगभग 700 से ज्यादा दिन हो गए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें हमने जो खोया तो दुनिया ने सीखा और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, और उस समय तय यह हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की किसी भी समस्या का निराकरण करेगा। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय कुछ संधियां, कुछ निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ ने कराए थे, चाहे वियतनाम का युद्ध हो चाहे कोरिया युद्ध हो। पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ पश्चिमी देशों के सामने बोना हो गया है, उनकी कठपुतली हो गया। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर कहा था कि यूनाइटेड नेशन को अपनी भूमिका के बारे में विचार करना चाहिए कि जिस बात के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था उसमें यूनाइटेड नेशन कितना सफल है, संयुक्त राष्ट्र संघ कितना सफल है। और एक बार आवश्यकता है इस बात की, पर दुनिया लड़ती रहेगी, झगड़ती रहेगी, यदि उन्हें सही दिशा नहीं मिली, सही मार्गदर्शन नहीं मिला। और आज आवश्यकता है भारत के संस्कार की, संस्कृति की, परंपरा की, वेद की, ऋचाओं की। हम जिस प्रकार कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, हम सबके सुखी की बात, सबके सुख होने की बात करते हैं। ये भारतीय फिलॉसफी है, ये भारतीय दर्शन है। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को दुखी देखना भी नहीं चाहते। अभी अभी जब तुर्की पे प्राकृतिक आपदा आई थी तो सबसे पहला देश भारत था जिन्होंने तुर्की की मदद की थी कि तुर्की, जबकि वो हमेशा भारत विरोधी रहा, पर हमने इस बात की चिंता नहीं की कि तुर्की हमारा समर्थक है कि विरोधी, क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं, हम इंसानियत के पुजारी हैं, और इसलिए तुर्की पर सबसे पहले मदद भेजने वाला कोई देश था तो भारत था। इस बात का हमें गर्व है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। पिछले दिनों कोरोना की महामारी से पूरा विश्व उथल पुथल हो गया था। ऐसे समय में 140 करोड़ देश के लोगों को नियंत्रित करना और कोरोना से बचाना, बचाकर इधर साइंटिस्ट के माध्यम से कोरोना का इंजेक्शन बनवाना, वैक्सीन बनवाना, और मुझे कहते हुए गर्व है कि हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हमने एक एक 140 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन लगवाया ही, पर 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भिजवाने का काम भारत ने किया। जो गरीब देश थे उनको निशुल्क भिजवाने का काम भारत ने किया है, क्योंकि हमारी दृष्टि समानता की दृष्टि है। हर विश्व मंच पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा पुतिन को, जो कि रशिया के राष्ट्रपति है, कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, ये सही समय नहीं है। युद्ध से मिलता है विनाश, विनाश के रास्ते पे जाना है या विकास के रास्ते पे जाना है। विकास के रास्ते पे जाना है तो सद्भाव है, शांति है, सुरक्षा है, और विनाश के रास्ते पे जाना है तो हमने देखा है द्वितीय विश्व युद्ध पे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका था। आज भी 75 साल बाद जापान के कई बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, आज भी उस बम का असर है। अब तो उससे 10 गुना खतरनाक, 100 गुना खतरनाक बन गए हैं बम। क्या होगा यदि विश्व युद्ध हो गया तो मानवता का क्या होगा? और इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे विचार, दुनिया तक पहुंचाए, इंसानियत का पाठ पढ़ाए, मानवता का पाठ पढ़ाए। आर्थिक संपन्नता और व्यापार हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है विश्व शांति, हमारा लक्ष्य है विश्व का विकास, हमारा लक्ष्य है विश्व में सद्भावना, हमारा लक्ष्य है वसुदेव कुटुंबकम। और इसलिए मुझे 5 मिनट का समय मिला है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बोलना तो ज्यादा चाहता था, किंतु समय की मर्यादा का मैं पालन करूंगा। अभी हमने शिवानी दीदी को भी सुना और ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मैं अभी दीदी से चर्चा कर रहा था, हेमलता जी से और इंदौर वाली हमारी दीदी से, कि पूरे संस्थान के अंदर पूर्णकालीन डिवोटी महिलाएं कितनी है और पुरुष कितने हैं। तो उन्होंने कहा लगभग 50,000 महिलाएं पूर्णकालीन है और 10,000 पुरुष हैं। मतलब विश्व का यदि महिला सशक्तिकरण का कोई केंद्र है तो ब्रह्मा कुमारी है, जहां पर कि महिला सशक्तिकरण का आप सीधा चित्रण देख सकते हैं। इतना बड़ा मैनेजमेंट सारी दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर शांति का संदेश। मुझे विश्वास है ऐसे संगठन ही विश्व में युद्ध को रोक सकते हैं, ऐसी विचारधारा ही। मुझे एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक छोटा सा देवी पुराण का किस्सा याद आ गया, मैं सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जब प्रलय हो गया था, धरती उथल पुथल हो गई थी, प्रलय शांत हुआ, शांत हुआ तो एक भी पेड़ पौधा नहीं था, एक भी जीव जंतु नहीं था, धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। पृथ्वी पर अगर बचे तो 4 लोग ही थे, पराम्बा मां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये देवी पुराण का एक किस्सा है। ब्रह्मा जी से कहा गया कि अब आप दुनिया का सृजन करो, दुनिया का सृजन करना है तो विवाह करना है, विवाह करना है तो 3 पुरुष थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और महिला एक थी, पराम्बा मां। पराम्बा से शादी कौन करेगा? पराम्बा बहुत ऊर्जावान, बहुत शक्ति का पुंज। ब्रह्मा जी से कहा कि आप विवाह कर लो, उन्होंने मना कर दिया। विष्णु जी से कहा आप विवाह कर लो, उन्होंने मना कर दिया। शिव जी चुप रहे, नेत्र बंद थे उनके, उन्होंने नेत्र बंद में ही शिव जी ने कहा कि ये देवी तुम्हारे नेत्र बड़ा सुंदर है, तीसरा ये नेत्र मुझे दे दो। देवी पुराण के अनुसार जो शिव जी का तीसरा नेत्र है वह पराम्बा मां ने दिया था। पराम्बा मां ने अपना तीसरा नेत्र निकाला और शिव जी के सिर पर लगा दिया, पर यह बताना भूल गई कि इसको कभी इसका प्रयोग कैसे करना। एकदम शिवजी को कौतूहल हुआ, उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे तीसरा नेत्र खोला, सामने पराम्बा मां खड़ी थी, वो भस्म हो गई, राख का ढेर बन गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों घबरा गए, शिव जी आंख मीच कर साधना में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या होगा शिव जी, क्या होगा महेश? शिव जी ने मंत्र पढ़ा और उस राख की 3 ढेरिया बनाई, और 3 ढेरिया बनाकर मंत्र फूका, 3 देवियां खड़ी हो गई, एक ब्रह्माणी, एक पार्वती मां और एक लक्ष्मी। तीनों देवियों का तीनों से विवाह हो गया। पर ये महिलाएं जानती है राख कितनी भी सोरो कभी सुरती नहीं है, बच ही जाती है। शिवजी ने देखा कि राख बच गई है, उन्होंने फूक मारी। फूक मारी जैसे ही, और ऐसा कहते हैं देवी पुराण में लिखा है कि वो भारत भूमि में आकर गिरी, और इसीलिए हमारे यहां भारत में माताओं को बहनों को देवी की तरह पूजा जाता है, ऐसा कहते हैं कि उनमें पराम्बा का अंश है। तो ब्रह्मा कुमारी में जितनी भी हमारी देवियां काम कर रही है, हमारी बहनें काम कर रही है, वो शक्ति पुंज है। और सारे विश्व में जिस प्रकार का काम हो रहा है, यह संदेश, शांति का संदेश, भाईचारे का संदेश, विश्वास का संदेश, सद्भावना का संदेश और विकास का संदेश, यह विश्व युद्ध को रोक सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। एक बार फिर से इस विशाल मंच पे, इस बहुत ही पवित्र मंच पे मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री कैलाश विजय वर्गिया जी का। आपने बहुत सुंदर रीति से कहा, कोई भी युद्ध किसी का भी उद्धार नहीं करता है, कोई भी समस्या का समाधान नहीं लेके आता है। तो अगर देखा जाए तो बाहर तो युद्ध चल ही रहा है, लेकिन हर एक मनुष्य के मन के अंदर भी युद्ध द्वंद्व चल रहा है। अच्छाई और बुराई के बीच में ये द्वंद्व हर एक के मन में चलता है, लेकिन उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? अपने ही तीसरे नेत्र को खोल के, उस शिव के संतान सभी को वो तीसरा नेत्र मिला हुआ है, आत्मिक स्मृति का तीसरा नेत्र। जब हम आत्मिक स्मृति का तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अपने ही अंदर में छिपे हुए असुर, नकारात्मक भावनाएं, व्यर्थ विचार, सब कुछ भस्म होकर के एक सकारात्मक ऊर्जा हम प्रज्वलित कर सकते हैं। अभी मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करने जा रही हूं, श्री दुर्गादास यूके जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज के इस सत्र के चीफ गेस्ट। आपसे अनुरोध है, चीफ गेस्ट एड्रेस हम सभी के समक्ष रखेंगे श्री दुर्गादास यूके जी।
ओम शांति। आत्मीय भाइयों बहनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र भूमि पर, इस संध्या बेला में जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त एक विशिष्ट विषय को लेकर समूचे राष्ट्र से अलग अलग विधा के मर्मज्ञ इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं और उनके मुखारविंद से इस विषय पर हमारी चेतना को झंकृत करने के निमित्त वे हमारा पोषण कर रहे हैं। आपको विदित है कि आज हमारे बीच में राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, अतिरिक्त प्रमुख ब्रह्म कुमारी, जिनके प्रबल और प्रखर तेजोवलय में हम सबको कुछ समय व्यतीत करने का सौभाग्य मिला है। आज के आयोजन के हमारे अति विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, माननीय नगरीय विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे बीच हैं, और आज के विषय पर संक्षिप्त सारगर्भित और प्रेरक प्रबोधन हम सबको प्राप्त हुआ। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित श्री झब्बर सिंह खर्रा जी, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य नगर विकास मंत्री हमारे बीच है, सम्मानित श्री अप्पला नायडू जी, माननीय सांसद विजय नगरम से हमारे बीच में है, हमारे बीच में वरिष्ठ डॉक्टर वल्लभ भाई कठिरिया जी, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गुजरात से हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में सम्माननीय श्री ओम गौर जी, राष्ट्रीय संपादक दैनिक भास्कर समूह भोपाल। हमारे बीच में सम्माननीय श्री अक्षय माथुर जी, प्रमुख अडानी ग्रुप चीन ऑपरेशन संघाई। राजयोगिनी बीके सुषमा दीदी, निर्देशिका ब्रह्म कुमारी जयपुर हमारे बीच में है। हमारे बीच में राजयोगिनी बीके हेमलता दीदी, प्रभारी ब्रह्म कुमारी इंदौर झोन। डॉक्टर बीके बनारसी जी, सचिव मेडिकल विंग आरईआरएफ हमारे बीच में है। हमारे बीच में मित्रों, विश्व के श्रद्धे मेरे बड़े भाई श्रद्धे मृत्युंजय भाई साहब, जिस दीदी ने मुझे यहां पर 3 बार आने का मुझे सौभाग्य मिला, ऐसी मेरी परम श्रद्धे बहन मंजू दीदी बैतूल से हमारे बीच में है, जो मेरी प्रेरणा स्रोत के रूप में और यहां तक मुझे आने का सौभाग्य मिला। आज के आयोजन में विविध राष्ट्रों से पधारे और पूरे देश से पधारे सभी आत्मवत, मित्रवत, सभी हमारे बंधु बांधव, भाइयों बहनों, आज का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आपसी विश्वास के माध्यम से युद्ध की रोकथाम, शांति एवं सद्भाव के लिए मीडिया की क्या भूमिका है, इस विषय पर लब्ध प्रतिष्ठ चिंतक विचारक शादिकाओं के रूप में हमारी दीदियां मंचासीन हैं और इस विषय पर व्यापक विस्तृत विचार प्रबोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। भाइयों बहनों, आज का यह आयोजन ग्लोबल समिट 2025 जो ब्रह्म कुमारी संस्था के तत्वावधान में शांति व नाबू रोड पर आयोजित हो रहा है, मित्रों वास्तव में मानवता के कल्याण के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, जो लगातार सतत ध्यान योग से जुड़े हैं, लगातार उनके भीतर के किसी केंद्र पर कोई रूहानी रोशनी की चैतन्यता अगरबत्ती जलती है, उतनी भी कहीं अग्नि प्रज्वलित है, तो उसकी रूहानी रोशनी में मित्रों देश का जो आंतरिक और बाह्य कलेवर है, वैश्विक कलेवर है, उसको आप महसूस कर सकते हैं कि देश का आंतरिक स्वास्थ्य भी इन दिनों ठीक नहीं है और विश्व का वैश्विक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। दोनों स्थितियां मित्रों आने वाले कल के लिए उचित नहीं है। दूसरा, हम देख पाते हैं कि ये 23.5 अक्षांश पर घूमती हुई पृथ्वी, ये धरती माता, इसके ऊपर युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया घटित करने के निमित्त शिव शक्ति के युग के रूप में कोई न कोई बदलाव के लिए सूक्ष्म और कारण जगत में, मित्रों इसके बदलाव के लिए चेतना दिव्य शक्तियां चैतन्य होकर विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में, कल्पनाओं के रूप में हम सबका पथ प्रदर्शन कर रही है। ऐसे समय में जब दुनिया के अनेक हिस्सों में अशांति, संघर्ष और भय का वातावरण है, तब ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा शांति और सद्भाव के इस विषय पर विचार विमर्श करना एक आध्यात्मिक सेवा और वैश्विक प्रेरणा का ये माध्यम है। आज का युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि विचारों, मतभेदों और अविश्वास का युद्ध है। भाइयों बहनों, जब राष्ट्र, समाज या व्यक्ति संवाद की जगह, जहां संवाद, समन्वय और सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, वहां संदेह और स्वार्थ को प्राथमिकता देने की वजह से विविध प्रकार के युद्ध जन्म ले रहे हैं, परंतु युद्ध किसी का समाधान नहीं बल्कि वह विकास, शिक्षा और मानवीय संवेदना को नष्ट करता है। इसलिए हमें युद्ध की जड़ अविश्वास और अहंकार को समाप्त करने की दिशा में ब्रह्म कुमारी आश्रम के माध्यम से, हमारी शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा बहनों के माध्यम से और राष्ट्र और विश्व की कुंडलिनी जागृत करने के निमित्त ये जो विविध प्रकार के प्रयत्न संपन्न हो रहे हैं, मित्रों आने वाले कल के सुखद विश्व की जो कल्पना है, वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है मित्रों, इसी तंत्र के माध्यम से सिद्धि के शिखर पर प्रतिष्ठित होने वाली है। शांति केवल मित्रों समझौतों से नहीं आती, वह आती है सहयोग और साझेदारी से। जब राष्ट्र मिलकर पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी प्रगति के लिए कार्य करते हैं तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग का पुल बनता है। ब्रह्म कुमारी संस्था का मूल संदेश भी यही है कि एक परमात्मा की संतान होने का बोध ही विश्व को एक परिवार बनाता है। यदि यह भावना हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन जाए तो युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। भाइयों बहनों, पुरुष और प्रकृति का ये युग्म, मित्रों हमारे सनातन संस्कृति में ये प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, ये एक सिक्के के दो पहलू है। मित्रों ये प्रकाश हो रहा है, ये प्रकाश इसलिए हो रहा है कि शिव और शक्ति के युग्म का उत्कृष्ट सामंजस्य समन्वय, यदि इसमें एक भी धारा ऋण और धन इसमें से एक भी कहीं दिशाहीन हो जाए तो उस पर कार्बन आ जाता है, प्रकाश नहीं होता, अंधकार रहता है। ऐसे ही पति पत्नी, नर और नारी का जो ये युग्म है, इस युग्म में मित्रों दोनों में समन्वय, सामंजस्य, एकात्मता जो मित्रों मूलाधार है सृष्टि के संचालन से लेकर विविध प्रकार की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए। भाइयों बहनों, पश्चिम और पूर्व का जो दर्शन है, जिन्होंने नारी शक्ति को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उतारकर पुरुष और प्रकृति के मध्य में जो एक विभेद, ये विभेद भी मित्रों विविध प्रकार के संकटों को देने वाला है। हमारे गुरुकुल परंपरा में मित्रों सर्वप्रथम मुंडन और दूसरा संस्कार उपनयन। मुंडन जन्म जन्मांतरों के जो कुसंस्कार यदि हमारे मस्तिष्क में है, उसके निवृत्ति का शास्त्रोक्त और वेदोक्त विधान है। ये शिखा वेदों में वर्णित है कि ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुषु मे। भाइयों बहनों, ये मस्तिष्क कल्प वृक्ष आनंद से जो भी बरसता है मित्रों, इसी ध्रुव केंद्र से मस्तिष्क में आता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा। सद असद, सार्थक और निरर्थक जीवन का जो बोध है, बुद्धत्व है, वो हमारे विविध प्रकार के संस्कारों के माध्यम से हमारी चेतना को झंकृत करने के निमित्त। भाइयों बहनों, यदि यह भावना और जो हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदर्शित, दिग्दर्शित और वर्णित जो सूत्र हमको दिए हैं, उन सूत्रों के माध्यम से मित्रों वर्तमान का जो परिदृश्य है उसको बदलने के लिए हमको अपने मूल की ओर लौटने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, दूसरा है जनेऊ संस्कार होता था, ये 9 लड़ियों का होता है, मां के पेट में 9 महीने हम रहते हैं, उसके बाद जन्म होता है, तो गुरुकुलों में यह बताया जाता था कि यह मानव जीवन पेट प्रजनन भोग भौतिकी के लिए नहीं, अपितु लघु से विराट बनने के लिए है, बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, महान व्यक्ति बनने के लिए यह जन्म मिला है। तीसरा सुरवाद, मैं कौन हूं, गुरुजी बताते थे कि तू देह है कि आत्मा है, देह नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, सिद्ध है, यति है। तो मित्रों, देह और आत्मा के मध्य का जो अंतर है उसको समझाने का काम हमारे संस्कृति में, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में, हमारे गुरुकुलों में संपन्न होता था। भाइयों बहनों, ये जो आपसी विश्वास है, ये विश्वास की कमी सच्चे अर्थों में जो हमारा जो मूल दर्शन था, मूल तत्व हमारे राष्ट्र का था, ऋग्वेद हमारा प्राचीन ग्रंथ, वैदिक संस्कृति से लेकर अद्यतन। मित्रों, हम चिंतन मंथन करते हैं तो ध्यान में आता है कि इन 2000 वर्षों में विविध आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्रों को, हमारे पुरातन पौराणिक ज्ञान को, मित्रों, जिस तरह से नष्ट भ्रष्ट करने के विविध प्रकार के प्रयत्न हुए। आजादी के बाद भी मित्रों, जिन्होंने 60 वर्षों तक देश पर शासन किया, उन्होंने भी इस दिशा में कोई चिंतन मंथन या जनता जनार्दन की चेतना को जागृत करके उनको उत्कृष्ट दिशा देने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। किंतु 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में, मित्रों, फिर से इस राष्ट्र की कुंडलिनी जागृत करने के निमित्त आस्था श्रद्धा के केंद्रों के पुनर्जागरण से लेकर हमारे योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो प्रतिष्ठा उन्होंने दिलाई मित्रों, और आज भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनने की दिशा में जो आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में मित्रों हमको आत्मचिंतन मंथन करते हुए जहां जहां भी मित्रों आत्मविस्मृति हमको हुई है, हमारे मूल से जो भटकाव हमारा हुआ है, उस चेतना को फिर से जगाने का काम, वो दीपक को प्रज्वलित कराने का काम हमारी पूज्य ब्रह्म कुमारी बहने उसको बखूबी कर रही है। और मित्रों, में आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आत्मीय मित्रों, आज मीडिया समाज की सबसे प्रभावशाली शक्ति है। वह चाहे तो नफरत को हवा दे सकता है या विश्वास और सद्भाव का सेतु भी बन सकता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि विविध प्रकार के देश के अंदर जो फसाद खड़े हो रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया के विविध प्रकार के मंचों के माध्यम से मित्रों कुप्रचार से लेकर सांप्रदायिकता, हिंसा और अशांति फैलाने के लिए इन मंचों का दुरुपयोग हो रहा है। इस दिशा में इस तंत्र से जुड़ी हुई जो प्रतिभाएं हैं राष्ट्र की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया की शक्तियां हों, उनको मित्रों नए सिरे से व्यावसायिक मनस्थिति से मुक्त होकर राष्ट्र धर्म और संस्कृति के निमित्त ये प्रजातंत्र का ये चौथा स्तंभ है, इनको यदि अपना युगबोध, कर्तव्य बोध, बुद्धत्व जगाने के निमित्त मित्रों ये आज का विषय यहां रखा गया है कि हम आत्मचिंतन और मंथन भी इस दिशा में करें और सही तरीके से समाज राष्ट्र का वो दिग्दर्शन, मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन वे कर सकें। मित्रों, जब मीडिया डर नहीं बल्कि भरोसा फैलाता है, जब वो टकराव नहीं बल्कि संवाद को बढ़ावा देता है, जब वो सनसनी नहीं बल्कि समाधान को प्रमुखता से देता है, मैं समझता हूं कि मीडिया में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि हर शब्द, हर चित्र और हर विचार किसी न किसी दिशा में समाज को ले जाता है, तब समाज को उत्कृष्ट दिशा में ले चलने का पाथे मित्रों उनको देने की आवश्यकता है। इसलिए मीडिया का दायित्व है कि वह विभाजन नहीं, समाज में विश्वास को फैलाने की दिशा में अपने गुरुतर दायित्व को निभाने के लिए वे आगे आए। आत्मीय भाइयों बहनों, राजनीतिक या आर्थिक समझौते अस्थायी होते हैं, पर आध्यात्मिक समझौते मनुष्य और परमात्मा के बीच स्थायी शांति लाते हैं। राजयोग ध्यान के माध्यम से जब व्यक्ति अपने भीतर के तनाव, भय, अहंकार को शांत करता है, तो वही शांति उसके परिवार, समाज और विश्व तक फैलती है। ब्रह्म कुमारी संस्था वर्षों से यह सिखा रही है कि शांति किसी बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त होती है। आज इस पावन मंच से मैं यही प्रासंगिक संदेश देना चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां युद्ध की नहीं, संवाद, समन्वय और सामंजस्य की संस्कृति विकसित हो, पल्लवित, पुष्पित हो, जहां भय की नहीं, विश्वास की नींव खड़ी हो, और जहां हर व्यक्ति, हर देश, धर्म यह समझे कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जब मन में शांति होगी, तभी मित्रों विश्व में शांति संभव होगी। आज मैं, मेरी मंजू दीदी और मेरे बड़े भाई आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब का अभिनंदन करता हूं कि यहां आने के लिए इतनी व्यस्तता के बाद भी यहां आने का सौभाग्य मिला। मैं दोनों को प्रणाम निवेदित करते हुए और सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यही विश्रांति देता हूं। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री दुर्गादास युके जी का। बहुत उमंग उत्साह भरा, शक्तिशाली आपका प्रवचन रहा। समय निकाल करके हम सभी के बीच आप उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ डॉक्टर वल्लभ भाई कातरिया जी, जो आज गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। आप चेयरमैन राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गुजरात, मृत्युंजय भाई जी, संतोष दीदी, सुषमा दीदी से अनुरोध है। डॉक्टर वल्लभ भाई कातरिया जी का सम्मान करें। ही इज अ रिनाउंड सर्जन एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गुजरात ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ ग्लोबल समिट 2025 ऑन यूनिटी एंड ट्रस्ट इंस्पायरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर एट अवर शांतिवन कैंपस अबरोड राजस्थान भारत फ्रॉम 10th to 13th October 2025। वी फील वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू प्रेजेंट यू विद गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड। वी ग्रेटली अप्रिशिएट योर एग्जेम्पलरी सर्विस एंड लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू पब्लिक हेल्थ, नेशनल डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ इंडिजिनियस वैल्यूज। Through your vision, humility and commitment to social and spiritual upliftment, you have brought immense pride to the nation and continue to motivate generations to lead a life of purpose, service and integrity. Saath saath, hum adarniya Padma Shri D.R. Kartikeyan ji ka bhi sanman kar rahe hain with The Jewel of Bharat. Is the former director CBI and National Human Rights Commission. On the auspicious occasion of Global Summit 2025 on Unity and Trust, inspiring a sustainable future at our Shantivan campus, Abaroad, Rajasthan, from 10th to 13th of October 2025, we feel very proud and honored to present you with Jewel of Bharat Award. We greatly appreciate your distinguished service, integrity, wisdom and unwavering commitment to justice and ethical governance, which have set exemplary standards in public life. Through your dedication to truth, human dignity, and national service, you have brought immense pride to the nation and continue to inspire generations to uphold values of honesty, fairness, and compassion in all spheres of life. Most respected Padma Shri D.R. Karthikeyan ji.
प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय शांतिवन के इस पावन धरा में, यहां एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन की इस भूमि में, जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद प्रदान करने यहां उपस्थित है, ऐसे हमारी राजयोगिनी बीके सुषमा दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मंत्रिमंडल के ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर श्री दुर्गादास उके जी, आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, अपलनाडु कलिशेट्टी जी, अक्षय माथुर जी, मृत्युंजय जी, आदरणीय जिनको अभी हमारे साथ सम्मान हुआ है, ऐसे मृत्युंजय जी, ओम गौर जी, कार्तिकेयन जी, यहां उपस्थित सभी बंधु भगिनी, आप सबको मेरा ओम शांति। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमें आज यहां आकर के ऐसे एक सम्मान का मौका मिला है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वैसे तो मेरा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से नाता राजकोट की हमारी भारती दीदी के कारण वर्षों से है, और मैं देख रहा हूं कि जैसे एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का काम, मनुष्य निर्मिति का काम, और वहां से सोशल एक्टिविटीज, एक कृषि हो, आरोग्य हो, विविध प्रवृत्ति हो, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात हो यानी कि पर्यावरण रक्षा के लिए, और इंटरनेशनल लेवल तक की इस पीस एंड हार्मनी की बात, ये प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा पूरे विश्व के लिए हो रही है, हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि 1937 में जब प्रजापिता ब्रह्मा दादा बाबा ने जब महिला सशक्तिकरण की बात भी करना, शायद पता नहीं क्या बात होगी कि नहीं, ऐसे समय में ये एक विश्वविद्यालय और महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा एक बीज आज विश्व की, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी एनजीओ के रूप में अभी बताया गया कि 50,000 दीदी और 10,000 भाई पूर्णकालीन और यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ अवार्ड लिए हुए ऐसी एक संस्था। लास्ट ईयर जो एक बढ़िया सा सेमिनार कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्थी सोसाइटी, इस स्पिरिचुअलिटी को केंद्र में रखते हुए शायद विश्व का सबसे बड़ा ऐसा एनजीओ है जो विश्व शांति के लिए, हार्मनी के लिए और पूरे मानवता के लिए काम कर रहा है। ऐसे समय में बाकी बहुत से वक्ताओं ने कहा, इसलिए ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आज एक पैराडाइम शिफ्ट का एक जमाना चल रहा है। एक साइड में 21वीं सदी विकास की सदी हो रही है कि विनाश की, ऐसे समय में एक माहौल ऐसा भी बना है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और हमारी ये राजयोगिनी राजयोग के मार्फत से या तो बहुत ऐसी संस्थाएं कहीं ना कहीं ऐसे विश्व शांति के लिए, हार्मनी के लिए, युद्ध बंद होने के लिए विकास के लिए और मानवता के लिए कार्यरत हैं। हमारे लिए आनंद की बात यह है कि हमने तो वसुधैव कुटुंब की बात पहले से ही कही है। हमने तो आनो कृत्वा कृत्वो भद्रा यंतु विश्वतः, जहां से अच्छे विचार लेकर के अपने संस्कृति ने समग्र विश्व के लिए एक अच्छा मैसेज भेजा है। ऐसी एक संस्कृति में मैं जैसे गौ गंगा गीता गायत्री और गोविंद का ये देश माना जाता है, तो हमने अभी गौ सेवा को एक इंटीग्रेटेड रूप में, जिनको हम गौ माता कहते हैं, न केवल रिलीजियस और स्पिरिचुअल लेकिन इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल सोशल एनवायरमेंटल ये सब में एग्रीकल्चर हेल्थ इसमें जो उनकी उपयोगिता है उनको ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में एक अच्छी एक मूवमेंट कि गाय की उपयोगिता के आधार पर ये विश्व को बेटर वर्ल्ड फॉर टुमोरो, गाय के विश्व आधार पर 17 SDGs ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैसे फुलफिल हो सकते हैं, ऐसा काम करने का एक मौका मिला है। और ऐसे समय में मुझे जो यहाँ खास करके विशेष रूप में सम्मान किया है, इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी का बहुत बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तब गाय, और गाय भी इतनी ही एक सार्वजनिक है, सार्वदेशीय है, सर्वस्पर्शी है, सर्व क्षेत्रीय है, इसलिए सही मात्रा में विश्व शांति के लिए, विश्व कोऑपरेशन के लिए, विश्व के एक सभी एक अच्छा विश्व बनाने के लिए भी गाय का महत्व और इनको आगे बढ़ाने के लिए आइए हम सब उसके अभी गौ विज्ञान ज्ञान का अच्छा प्रचार प्रसार करके मैं तो वैसे कृषि जो कृषि का और गौ का पूरा राजयोग का क्षेत्र है, योगिक कृषि का उनसे ज्यादा जुड़ा हूं। हम सब मिलकर के ऐसे प्रयासों में कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में एक अच्छे विश्व की जो कल्पना करते हैं हम, 21वीं सदी सही में एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी की सदी बने, सही में एक विश्व शांति की सदी बने, ऐसी सदी के लिए हमारी नई पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए हम सब अपना योगदान दें, यही हमारा कर्तव्य है। इसके साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वल्लभ भाई जी का। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड पद्मश्री डीआर कार्तिकेयन जी टू शेयर योर फीलिंग्स एंड थॉट्स टुडे।
ओम शांति। नमस्ते। मोस्ट रेस्पेक्टेड दीदीज, Honorable Ministers, dignitaries on the dais, dignitaries in the audience, brothers and sisters, I am not mentioning any name to save time, and I am not even reading the points I have made because we are running time, excepting to say I have been associated with this great movement more than 40 years. I had the privilege of knowing, meeting, enjoying the love, respect and blessings of Badi Dadi Prakashmani ji, Dadi Gulzar, Dadi Janaki ji and all the senior Didis and Rajyogi brothers, sisters, not only in Mount Abu. In fact, my request, Chandrababu Naidu, he came here with his family, after seeing what is happening here, he was so impressed. He said, invited them to create an academy for a better world in Hyderabad. And he did. He kept his word and he gave beautiful land. You won't see the Shanti Swarup now. It is one of the best campuses in the country. Not only that, later on, after the state was divided, again, for the 10th anniversary, I requested him to come and he came. And he invited the Brahma Kumaris, please come and start centers in 3 cities of the new Andhra Pradesh also. And he has given them. And as you know, the capacity of Dadis, the Brahma Kumaris, you know, they could establish centers, beautiful centers in no time. That is the devotion of the million committed followers of Brahma Kumaris now. Now the subject, unity and trust. Unity is possible only when there is trust. And when there is trust, unity happens always. And sustainable development world. And the elimination of war. Wars begin in the minds of men. That's what the UNESCO preamble says. Wars begin in the minds of men, so the ramparts of peace have to be established in the minds of men. We have seen what is happening today. United Nations, all the powerful nations, they are watching helplessly. The killings going on. Killings going on. Thousands of women and children getting killed in many parts of the world, particularly Ukraine and West Asia. These children are being starved. And the world is helpless. So that is why we had a global conference on meditation a few months back in Bharat Mandapam. Practicing meditation of different systems, we all came to this conclusion, the mind, you have to change the minds of people. Self-transformation only, as Dadis used to say, global transformation is possible only from self-transformation. Global peace is possible when there is peace in the individuals. When there is peace in individuals, there is harmony between body, mind and soul. The families will be together. There will be justice, society, peace and all that in the families. And such societies only can create leaders, ethical governance, spiritual governance as we call it. Spiritually, I am not talking about religious thing. People who care for the world, for each other and all that. When this leadership comes in all the countries, such leaders only can bring about global peace. So everything has to start with the individual. That is the technology of Brahma Kumaris, Bhagavan, Dadis have promoted it. And that's how, you know, people who are following this system, they are all peaceful. Peaceful, happy, joyous. You mentioned, you know, anywhere, whether it's senior people or young brothers and sisters, they are so dedicated to the cause. This type of care and service you don't find in any other organization. So spirituality, now says global warming. Global warming, climate crisis, glaciers are melting so fast, many island nations are going to be submerged, you can't save them. Coastal cities are going to be flooded, sea water, you can't put walls around them. That's again because we have gone against nature. The last century we have done so much of damage. Our ancestors lived, but they never damaged the environment. But this last 100 years, over exploiting nature, selfishness and all that, our children, grandchildren will blame us. For they may not get clean water to drink, clean air to breathe, good food to eat. So for that, brothers and sisters, there's a big responsibility on everyone, particularly the people in the spiritual movements like Brahma Kumaris. We have to spread this message. We have to become more responsible, respectful to nature, each other and all that. Again, I will conclude telling the basic, ultimately we have to start with individuals. The technology is given by the Brahma Kumaris now. Spirituality and meditation. Respect all forms of life. Plant-based diet. If you want to save humanity from self-destruction, Mother Earth is crying for relief now. So, as Manik said, you have a duty, each one of us is, you are fortunate to come into this path. So we have to spread each one of us to 100 or 1,000 people to say, come on this path. Not only have a joyous, peaceful life, create a society, there is no war, world without war, where there is justice, peace and harmony, and we can leave a better world to our children and grandchildren. Thank you. Namaste. Thank you for this honor to me. Thank you, Ms. Bhadrajanavai. Thank you. Namaskar.
Thank you very much, most respected D.R. Karthikeyanji. Now I would like to invite Mr. Akshay Mathurji, who is the head of Adani Group, China Operations, Shanghai, and Sri Appala Naidu Kalisetti Ji, who is the Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Vizianagaram. Aapka Sanman.
Thank you.
आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, आदरणीय संतोष दीदी और सुषमा दीदी से अनुरोध है कि आदरणीय अक्षय माथुर जी और आदरणीय अपला नायडू जी का सम्मान करें। हेमा जी, इस कार्यक्रम के अंतिम चरण के ओर चलते हुए मैं अनुरोध कर रही हूं परमादरणीय संतोष दीदी जी से, आज के इस सभा को आप अपने आशीर्वचन से लाभान्वित कराएंगे। आप ब्रह्म कुमारी के जॉइंट चीफ है और महाराष्ट्र जोन के आप डायरेक्टर भी हैं। बचपन से ही इस संस्था के साथ जुड़ करके अनेक अनेक राज्यों का सेंटर्स खोलने में निमित्त बने हैं। हजारों लाखों ब्रह्म कुमार्स और कुमारियों को आप मार्गदर्शन दिया है, उनका जीवन बनाया है। ऐसे त्यागी, तपस्वी, महान आत्मा राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी संतोष दीदी जी,
ओम शांति। सब प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। काफी समय से लेके हम सब युद्ध नहीं करें, उसके बजाय आपस में भाईचारा हमारा बढ़े, प्रेम बढ़े, उसके लिए अलग अलग विचार सुन रहे। हमारे जो भी मनसा चित मंच में उपस्थित भाई बहने हैं, उन्होंने अपने बहुत सुंदर सुंदर विचार बताए कि जब तक अपने अंदर का जो ईगो है, मतभेद है, ये जब तक नहीं मिटता है तब तक झगड़े नहीं मिट सकते। हम लोग देखते हैं साइंस ने तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर लिया है, स्थूल रीति से बहुत साधन बढ़ते जा रहे हैं, जीवन के लिए सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही है, परंतु उसके साथ साथ मनोविकार जो है वो भी बहुत फास्ट गति से बढ़ रहे हैं। एक दो के लिए ईर्ष्या, वैर, द्वेष, भय, जिसके कारण ये सारे युद्ध होते हैं। तो अगर युद्ध विराम करना है तो युद्ध का जो मूल कारण है अशांति, और अशांति का कारण जो मनोविकार है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमेशा कहा जाता है मन जीते जगत जीत। अगर मन के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो सारे जगत के ऊपर आपकी विजय हो गई। क्योंकि बाहर के युद्ध तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु आज इस कलयुग के अंतिम चरण में हम देखते हैं एक एक व्यक्ति के अंदर बहुत बड़े युद्ध चलते रहते हैं। नींद में भी युद्ध चलते, विचार चलते, अच्छे विचार कम, निगेटिव विचार ज्यादा, तो जिसके कारण अशांति बढ़ती है, दुख बढ़ता है और आपसी मतभेद बढ़ते हैं। और फिर सिर्फ ऐसा नहीं, देश का और देशों के साथ युद्ध करते हैं। आज हम देखेंगे घर घर जो है जैसा युद्ध का मैदान बना हो, आपस में एक दो के साथ संस्कारों का मिलन नहीं कर सकते, विचारों का मिलन नहीं कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े अशांति बढ़ती जा रही। तो हमारी भारत भूमि तो इतनी श्रेष्ठ भूमि है, जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा सुखमय संसार था। इतनी अशांति, इतना दुख, इतने लड़ाई झगड़े का मूल कारण है ये विषय विकार, और हर एक व्यक्ति इन विषय विकारों को छोड़ना चाहता है, परंतु उनको छोड़ने का एक ही आधार है, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन। जितना जितना आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा हमारे अंदर आती जाती है, सर्वशक्तिवान से हम जितनी जितनी शक्तियां लेते हैं योग के द्वारा, उन शक्तियों के आधार पर हम इन विचारों को, निगेटिव विचारों को पॉजिटिव कर सकते हैं, जो निराशा है उसको आशा की तरफ ले जा सकते हैं। परंतु हमेशा कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर सचमुच हमारे को शांति और सुखमय संसार चाहिए तो हमारे को स्व से चालू करना पड़ेगा। जब हम खुद बदलेंगे तो सारा जग बदली हो जाएगा। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है कि आप अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, तो अपने कर्मों में, अपनी वाणी में परिवर्तन आएगा और आसपास भी सब धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता जाएगा। मैं समझती हूँ आज यहाँ जो भी एकत्रित हुए हैं, अगर सब ये अपने साथ प्रण कर लेवे कि कम से कम रोज हम आधा घंटा तो भी मेडिटेशन करेंगे, ईश्वरीय याद में रहेंगे और शांति के प्रकंपन सारे विश्व में फैलाने की सेवा करेंगे, तो मैं समझती हूँ इतने सभी के जो शांति के विचार है उसका असर जरूर विश्व के ऊपर तो होगा, पर पहले हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उसका असर होगा और धीरे धीरे वो शांति जो है चारों तरफ फैलती जाएगी। अगर हम शांत होंगे तो हमको देख के दूसरे भी शांति को धारण करते जाएंगे। तो इसीलिए इन मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे को मेडिटेशन की और ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता है। स्कूल और कॉलेजेस में भी इसकी जो खास पीरियड रखे जावे, तो जिसके कारण क्या हो, बच्चों के अंदर वो संस्कार पड़े और उनके अंदर भी एक शांति क्या है ये भी आज हम देखते हैं उनको पता नहीं, तो किस रीति से हम शांत रह सकते हैं ये अगर उनको समझाया जाता है। काफ़ी कॉलेजेस स्कूलों में तो हमारे क्लासेस चलते ही है, परंतु सब तरफ अगर ये चले तो उससे क्या होगा, काफ़ी फायदा होगा। ये एक मॉरल एजुकेशन सबको दिया जावे, सबके अंदर दिव्य गुणों की धारणा कराई जावे, तो विश्व परिवर्तन में देरी नहीं लगेगी, शांति फैलने में देरी नहीं लगेगी। और जब मन का युद्ध बंद हो जाएगा तो बाहर का युद्ध स्वतः ही बंद हो जाएगा, वो हम खुद अनुभव करते हैं। जब मन को एकाग्र करते हैं परमात्मा की तरफ तो शांति अनुभव होती है। जब हमें शांति लगती है तो हमारे परिसर में, हमारे आसपास जो है उनको भी शांति के वाइब्रेशन जाते हैं। तो इसीलिए हमारे को इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है वो शांत होता है। वो शांत होने का कारण क्या है, क्योंकि वहाँ जो भी जाते हैं उनके विचार पवित्र होते हैं, पवित्र विचारों को धारण करते उस समय पर। अगर सदैव हम समझें कि ये सारा जो विश्व है ये एक चेतन मंदिर है और हम इसके अंदर चेतन मूर्तियां हैं। अगर ये बात ध्यान में रखे तो जरूर क्या होगा, हमारे जो निगेटिव विचार है वो आप ही बंद होते जाएंगे और श्रेष्ठ विचार हमारे अंदर आते जाएंगे। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि मीडिया में वो ताकत है वो शांति का दीपक चारों तरफ जगा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि दूसरे विचार फैलाते हैं, उसके बजाय अगर ये भी विचार फैलावे सब तरफ तो एक बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। और आज हम देखते हैं मीडिया के ऊपर ही लोगों को बहुत भरोसा है और सारा समय सबके हाथ में तो वो खिलौना पकड़ा हुआ है जो हमेशा न्यूज सुनते रहते। तो अगर ये न्यूज भी आवे, हीलिंग की न्यूज, कैसे अपने मन को हील कर सकते हैं, आत्मा को कैसे हम एक दिव्य आत्मा बना सकते हैं, श्रेष्ठ जीवन को कैसा हम अपना सकते हैं, अगर इन बातों को भी साथ साथ में समझाया जावे तो मैं समझती हूँ काफी फर्क पड़ जाएगा। और धीरे धीरे ये जो इतनी आपस में खींचातान चल रही है, रस्सी खींच चल रही है, हर एक कोई समझता है कि हम बड़ा है, उसके लिए अनेक अनेक विनाश के लिए साधन अपना रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बजाय शांति सब मिलकर के अगर शांति के लिए एक प्रतिज्ञा करते हैं तो उससे जरूर बहुत बहुत फायदा होगा। आप कहेंगे बहन जी हम तो इतने बिजी होते हैं हमको फुर्सत ही नहीं मिलती, और सचमुच अभी तो मनुष्य जो है वो एकदम यंत्रवत बन गया, यंत्रों के अधीन हो गया, भागदौड़ में सदैव उसका समय जाता है। हम बॉम्बे में भी देखते हैं सवेरे से निकलते हैं रात को वापस कितना मुश्किल घर में पहुंचते हैं, तो समय नहीं मिलता है। परंतु अगर सवेरे का समय जिस समय हम उठते हैं थोड़ा सा जल्दी अगर आधा घंटा उठ लेते हैं और बैठ करके एकाग्रता का अभ्यास करते हैं तो सारा दिन हमारा जो है वो बहुत अच्छी रीत जाता है। और शुरुआत हमेशा कहता है ना, कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को घर के सब मेंबर जो है उनको जरा चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं पता नहीं आज किसका मुंह देखा जिसके कारण आज हमारा मूड खराब हो गया, सारा वातावरण खराब हो गया। तो हम भारत वाले ये मानते हैं कि सवेरे उठने के समय जैसी स्थिति होती है सारा दिन वैसी स्थिति रहती है। तो हम मनुष्यों के मुंह देख करके और उल्टी निगेटिव बातें सोच सोच के अपने मन को खराब करने के बजाय अगर सवेरे हम परमात्मा के साथ प्रीत लगाते हैं, शांति के सागर को याद करते हैं, तो सारा दिन वो शांति हमारे को काम में आती है। तो इसीलिए हमारा यही शुभ संदेश है कि जरूर आधा घंटा आप स्व उन्नति के लिए अपना निकालो और शांति के वाइब्रेशन सारे विश्व को दियो, क्योंकि हम सभी का फर्ज है सब तरफ शांति स्थापन करना, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है तो हम उसके बच्चे शांति के दूत हैं। और तभी शांति दे सकते हैं जब हम खुद शांत रहते हैं। तो आप सभी यहाँ पर आए हैं, हमारे खास जो भी मेहमान हैं, खास हमारे वक्तागण हैं जिन्होंने इतने अच्छे विचार सुनाए, उनको भी बहुत बहुत उनके भी बहुत बहुत आभारी है। आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स है। आप जरूर यहाँ से ये अच्छी बात अपने जीवन में पक्की करके जाएंगे कि हमको थोड़ा समय स्व उन्नति के लिए और परमात्मा की याद में रहने के लिए लेंगे। और खास ये कार्यक्रम जो हमारा मृत्युंजय भाई और उनके साथ मिलकर के जो सारे ग्रुप में किया है, मेहनत किया है इतनी, सभी ने किया है परंतु कोई ना कोई निमित्त बनता है, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई होवे और बहुत बहुत थैंक्स होवे। ओम शांति।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ डॉक्टर बनारसी भाई जी वोट ऑफ थैंक्स रखेंगे हम सभी के बीच। सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल विंग RERF। आप सभी के भोजन के बाद बहुत सुंदर एक कार्यक्रम रखा गया है, 70 सिंगर्स एक साथ गाने वाले हैं। आकार फाउंडेशन पुणे से यहाँ पधारे हुए हैं, तो 2 मिनट सभी यहाँ बैठे फिर उसके बाद सभी भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे।
ओम शांति। हृदय से सम्मानित हमारे मंचासीन कहें, हमारे मंच के शोभा बढ़ाने वाले कहें, मंच के अथॉरिटी कहें, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं कि आपके आने से हमारी सभा की शोभा बढ़ी। तो हृदय से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का हम हृदय से शुक्र गुजार हैं, क्यों कि आप स्वयं नहीं आए हैं, परमात्मा के निमंत्रण पर आए हैं। आप सब डेलीगेट्स भारत के सच्चे लाल सच्चे ज्वेल से हमारा एक ही आग्रह है कि जो कुछ भी यहां सुन रहे हैं उसको उतारें, कारण कि राजयोगी लाइफ स्टाइल से हम लोगों ने रिसर्च करके देखा है कि लोगों को कोरोनरी आर्टरी क्लीन हो जाती है। ये साधारण मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारियां नहीं सिखा रही है। अगर हार्ट के बीमारी से अनेक बीमारियों से बचना है तो राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाना ही पड़ेगा। दूसरा, नशा मुक्त भारत अभियान, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का प्रोजेक्ट है। सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी के साथ एमओयू किया है। नारकोटिक ब्यूरो उनके डायरेक्टर जनरल गर्ग साहब ने एमओयू साइन किया है और 4 करोड़ लोगों तक ब्रह्मा कुमारी आश्रम के भाई बहने पहुंचे हैं। 36 रात चल रही है, एक सैंपल के लिए एक कॉर्नर पर रखा है। आप लोगों को जो भी हमारे एमपी एमएलए मंत्रीगण आए हैं उनसे निवेदन है कि अपने कंस्टिट्यूएंसी में भारत को नशा मुक्त बनाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और ये विश्व गुरु बनेगा। हम इतना ही कह करके आप लोगों को फिर से हृदय से तहे दिल से हम आपका शुक्र गुजार हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आपका भी तहे दिल से धन्यवाद भाई साहब। 2 मिनट परमात्मा की स्मृति में बैठकर फिर इस सत्र को यहाँ समाप्त करते हैं।